اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے, اکیلے کھڑے ہوئے, اکیلا اسٹینڈ لیا. اللہ نے مختلف پلیٹ فارم تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے دیے, لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے. آپ نے خود دیکھا, نیوز ون سے شروع ہوئے تو چاہے ڈیبیٹ
دینے, وہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو وہ تو زیادہ سسٹین کر نہیں سکے,
کر نہیں سکے گا. مگر اللہ, آپ نے ہمیں 7 سال میں کوئی پریشان دیکھا نہیں؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کمپرومائز کیا ہو کسی کے ساتھ؟ ہم نے کبھی بیک اسٹیپ کیا ہو, کوئی ہمارا یو ٹرن ہو, کوئی ہمارے ایک ویڈیو کے زمانے میں آپ نے یہ بات کہی تھی, آپ نے یہ بات
Whatever you are saying for last 7 years, you are saying
it. ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ کس وقت کیوں ہوتا ہے, یہ وائی ڈز اٹ ہیپن؟ تو یہ ہم صرف میڈیا پہ آنے کے شوق میں تو نہیں کر رہے ہوتے نا, ایک جنون ہے, ایک عشق ہے, پیشن ہے.
وہ پیشن ہے, وہ تو نظر آتا ہے پیشن, obviously. اور پیشن کے بعد ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے. جو آپ جن ماسٹر سے ٹکرا رہے ہیں وہ تو آپ ایک سمبل صحیح سمجھتے ہوئے ہر انسان نہیں کر رہا, جب تک وہ پیشن نہیں ہو پیچھے.
یہ کام عقل والوں کا نہیں ہے, جنونیوں کا ہے.
بالکل, عشق والوں کا,
جنونیوں اور عاشقوں کا کام ہے. ہم پہ بہت زیادہ تو استغفر اللہ العظیم, میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی شخص کے خلاف اتنی وضاحمت ہوئی ہو, اتنی مخالفت ہوئی ہو. یعنی حامد میر نے جب کیپٹل ٹاک پر طاہر اشرفی کو بلا کر ہم پر نعوذ باللہ نبوت کا الزام لگایا تھا, تو اس وقت ہمارے بڑے بڑے دوستوں نے سمجھا تھا کہ اب یہ قتل کر دیے جائیں گے.
بالکل,
اس سے بڑے الزام
کے پلان تو یہی کیا ہے, پلان یہی تھا. کراچی میں جو کچھ ہوا وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو سائلنٹ کر دیا جائے, اذوان نہیں کر سکتے تو اذوان کر دیں.
تو انہیں رسالت کا الزام لگا کے قتل کروا دو, کبھی یا الزام لگاؤ کہ فوج میں بغاوت کروانا چاہتے تھے, اتنے بڑے بڑے الزام کہ فوج ان کو ختم کر دے.
جی,
ہر قسم کی کوشش.
بالکل بالکل, ابھی بھی کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ہر سیگمنٹ اپنی طرف سے پورا اٹمپٹ کر رہا ہے کہ آپ کو سائلنٹ کر دے.
مگر ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا فضل شامل ہے اس مشن میں. ہم کسی کے سہارے نہیں کھڑے, اللہ کے فضل پہ کھڑے ہوئے. اگر مشرکین مکہ اس بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سیدی رسول اللہ کے خلاف جو مخالفت اور مزاحمت کر رہے تھے, اس کے باوجود وہ جماعت جب بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو جو ان میں سمجھدار تھے وہ جانتے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ اذان مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی.
بالکل صحیح,
پیپل شوڈ ریئلائز دس. 7 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت حال یہ ہو چکا تھا کہ پاکستان آرمی آفیسرز یونیفارم پہن کے جی ایچ کیو میں نہیں جا سکتے,
نہیں جا سکتے تھے. بالکل,
جنرل مشتاق ہمارے دوست تھے, لیفٹیننٹ جنرل, جی ایچ کیو کے گیٹ پہ شہید ہوئے,
سرجن
جنرل ہمارے دوست بھی تھے, گیٹ پہ شہید ہوئے. اس وقت ہم نے یہ ڈیوٹی شروع کی تھی.
صحیح,
کہ اس وقت جب ہم جنگ ہار چکے تھے, مسلمان تھے, داڑھی والے تھے, حافظ قرآن تھے, لیکن تبلیغی نہیں,
تبلیغی نہیں.
اس وقت ہم نے جنگ شروع کی تھی پاکستان کے دفاع کی, جب ہم جنگ ہار چکے تھے. یعنی جی ایچ یو کے باہر جگہ آرمی آفیسر یونیفارم نہ پہن سکے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جنگ ختم ہو گئی. اب آپ کیا ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا یونیفارم پہن کے جی ایچ یو نہیں جا سکتے؟
اپنے ملک میں, اپنے ہیڈ کوارٹر,
ہم نے وہاں سے جنگ کو اٹھایا.
بالکل,
اور آج اللہ کے فضل سے مشرق و مغرب میں پاکستان آرمی کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا,
بالکل,
کہ افغانستان میں امریکہ کو ہم نے کیسے سیدھا کیا, ٹی ٹی پی کو, افغان طالبان کو. اب وہ سارے ہمارے دشمن جو تھے, امریکن اور افغان گورنمنٹ, اب مل کر ٹی ٹی پی کو مار رہے ہیں.
بالکل صحیح,
اور یہ ہمارے کہنے پہ مار رہے ہیں نا, پاکستان آرمی کے کہنے پہ مار رہے ہیں.
بالکل صحیح,
وہاں سے ہم نے آرمی کو اٹھایا اور یہاں لے کر آئے.
نو ڈاؤٹ, وہ تو جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی ایک ایسا وقت تھا جب بالکل ساری امیدیں ختم ہو
چکی. پاکستان سے زندہ بھاگ کہا جاتا تھا, پاکستان زندہ باد تو کوئی نہیں کہتا تھا.
آرمی کے خلاف کس کس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا, کیا کیا الفاظ یہ گروپ بول رہا تھا.
جتنا طاقتور سیفما تھا اس دور میں, جتنا طاقتور جیو تھا اس دور میں,
بالکل
ان کو کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا, کوئی ان کے سامنے کنفرنٹ کر کے بات کرنے والا نہیں تھا کہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
آئیڈیالوجی کو چیلنج کر رہے تھے,
نظریات کو, ہماری جڑیں کاٹ دی.
دو ہر طرف سے حملہ تھا,
کوئی مولویوں کو کنفرنٹ کرنے والا
نہیں تھا. بالکل,
اور اس وقت اللہ نے کرم فرمایا کہ جب الحمدللہ ہماری اذان گونجی ہے, اور آج اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اب سیفما بالکل ڈیفیٹ ہو چکا ہے. مطلب وہ میڈیا میں ہے لیکن ان کا نیریٹو تباہ ہو گیا,
نیریٹو ختم ہو گیا.
جیو نیریٹو تباہ ہو گیا اس کا.
بالکل,
ٹی ٹی پی اب ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ ان کو خوارج کہتی ہے.
بالکل,
ان کا نیریٹو تباہ ہو گیا.
بالکل,
پاکستان آرمی الحمدللہ غزوہ ہند کے مجاہدین بھی ہیں, خوارج کے خلاف جہاد بھی کر رہے ہیں, پوری طرح کنوینسڈ ہیں. شروع کا دور تھا کہ جب آرمی میں ریزگنیشن ہو جاتی تھی, لوگ ریزائن کرتے تھے کہ ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں, اب والنٹیئر کرتے ہیں.
بالکل,
اب اس قدر والنٹیئر ہیں لڑنے کے لیے ان کے خلاف کے روکنا پڑتا ہے کہ یار ابھی کافی ہیں آگے لڑنے کے لیے. اتنی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آرمی نظریاتی طور پر مستحکم ہو گئی ہے, ہمارا کام ہو گیا ہے, our job has been done, we have won the war. اب ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں اب اس کی ٹرمینیشن اسٹریٹجی ہے, اب اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں.
صحیح,
انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. وہ
یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ یہ ٹی ٹی پی, ایل جے, سپاہی صحابہ, اس کو آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, اسے جبکہ کوئی اور نہیں کر پا رہا تھا یا سوچ بھی نہیں پا رہا تھا. या अभी भी नहीं सोच पा रहा। मैं पहले की क्या बात करूं, अभी भी जो मेन स्ट्रीम आप तारिक जमील साहब की बात कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, नहीं कर रहे कंडम। व्हाई आई मीन एपीएस जैसे अटैक के बाद भी कंडम नहीं कर रहे, क्यों?
देखिए खुरम, अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल जब फरमाते हैं ना कि फितरत खुद करती है लाले की ना बंदी, वो मेरा कोई कमाल इसमें नहीं है। मेरे मालिक ने जब मुझे 22 साल की उम्र में अफगानिस्तान भेजा था तो किसी तरबियत के लिए भेजा था ना। वहां पे 7 साल जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे तो वहां पूरी दुनिया की मुसलमान तहरीकें वहां मौजूद थी, वहां चेचन्स भी मौजूद थे, वहां यूगोस्लाविया के मुसलमान भी थे जिन्होंने आगे जाके बॉस्निया की जंग में अपना किरदार अदा किया, वहां पूरी दुनिया के तहरीक हर मुल्क इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक के सारे मुसलमान वहां मौजूद थे और हर किस्म की मुसलमान आइडियोलॉजी वहां मौजूद थी। उसमें मॉडरेट मुसलमान भी थे, उसमें लिबरल मुसलमान भी थे, उसमें तकफीरी और खवारिज मुसलमान भी थे। उस जमाने में भी खवारिज आइडियोलॉजी थी लेकिन ये थोड़े थे, बहुत महदूद थे। ऐमन ज़वाहिरी नया नया पहुंचा था, उसकी वजह से उसामा तकफीरी नहीं था, ऐमन ज़वाहिरी तकफीरी था, उसने खराब किया इनको ज्यादा। डॉक्टर अब्दुल्ला आजम तकफीरी खवारिजी नहीं थे, वो फलस्तीनी थे, वो एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ आए थे। तो उस वक्त हमको अल्लाह ने ये सारे दिखा दिए थे। उस वक्त हम जिहाद के जब काम पाकिस्तान में करते थे तो पाकिस्तान के सारी जिहादी तहरीकों तंजीमों उलमा से मिलते थे, जाहिर है हमारा काम ये था। सबकी रियलिटीज हमें अल्लाह ने दिखाई थी कि कौन किस कैटेगरी का है, किसके नजरियात क्या है, कौन फिरका वाराना बुनियादों के ऊपर जंग करवाएगा, आगे जाके कौन तकफीर की बुनियाद पर कराएगा, कौन जो तकफीर एक आइडियोलॉजी का नाम है, तकफीरी जब हथियार उठाता है तो खारजी बनता है।
बिल्कुल सही,
ठीक है ना, एक
बिल्कुल सही।
तो आपको नजर आता है कि इसमें जरासीम है खारजी बनने के। अल्लाह ने यह सारा काम हमें अफगानिस्तान में दिखाया। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद जो हम पाकिस्तान में काम करते रहे उसमें एक हमारा इंसिडेंट वो यूसुफ अली वाला केस भी था, कि जिसके अंदर देवबंदी बरेलवी घमसान की लड़ाई हुई उस केस में। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जैसे शख्स एक तरफ खड़े हुए, यूसुफ के दिफा में खड़े हुए थे, और उसके खत्म नबूत वाले जो मुफ्ती नईम वाला ग्रुप जो था वो उसके अपोजिट खड़ा हुआ था। आज भी वो जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि झूठे नबी को तुम मानते हो, असल में तो वो देवबंदी बरेलवी केस था।
बिल्कुल सही है।
तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को भी काफिर करें ना फिर आप, क्योंकि वो जो खड़े हुए थे उसके दिफा में।
बिल्कुल सही।
तो उस केस के अंदर हमें फिर इन मौलवियों की असलियत नजर आई कि जब हम अब्दुल सत्तार खान न्याजी की तरफ से जाकर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी और मौलाना मंजूर शाह साहब साहिवाल वाले जो बड़े बड़े नाम हैं इनके, इनकी तरफ से जाके जब हमने चंद एक मौलवियों से उलमा से बातें की जाके इनके कि भाई आप क्यों झूठा इल्जाम एक आदमी पे लगाते हो, तब पता लगा कि ये कारोबार करते हैं सिर्फ। ये इन सबको हम उस वक्त से जानते थे ना, इनके साथ हमारी, ये हमें उस वक्त से जानते हैं और हम इनको उस वक्त से जानते हैं, और हम समझते हैं कि अल्लाह ने वो यूसुफ अली वाले जो केस अदालत मुकदमे में जो हमने थोड़ी बहुत हेल्प की असिस्टेंस की उसने हमें बहुत तरबियत की हमारी, कि हमें पूरा निज़ाम नजर आ गया कि हमारी अदालतें कैसे काम करती हैं, हमारे उलमा कैसे काम करते हैं, हमारी जुडिशरी कैसे चलती है, हमारे वकील कैसे, जज किस तरह फैसले करते हैं, अदालत करते हैं इंसान, वो भी अल्लाह ने एक तरबियत का निज़ाम रखा था। जब अफगानिस्तान का बैकग्राउंड मुजाहिद का और फिर पाकिस्तान का जुडिशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह देखा और पाकिस्तान के उलमा से इस तरह मुलाकात की, तो जाहिर है कि जब 9/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो हमें फौरन नजर आ गया कि ये वो एलिमेंट्स के जो उस वक्त तकफीरी और खारजी बीज रखते थे अब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को हम सबको जानते हैं, जाहिर है कौन है जिसको नहीं जानते, हम अब्दुल्ला अब्दुल्ला के ग्रुप को भी जानते थे, हम अशा मसूद के ग्रुप को भी जानते थे, और हमें पता था कि वो लोग खारजी नहीं है, उनके हमारे साथ इख्तलाफ हो सकते हैं मगर वो कभी भी सुसाइड बॉम्बर्स और खारजी और तकफीरी ये ग्रुप्स को नहीं तैयार करेंगे। तो ये ग्रुप कहां से निकला है बीच में, नॉर्दर्न अलायंस ने तो ये नहीं तैयार किया था, ये कहां से आया बीच में? इनका फिर वो ताल्लुक, क्योंकि पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ ताल्लुक था, तो वो कांग्रेसी मौलवियों का वो बैकग्राउंड कि जिन्होंने कायदे आजम को काफिर आजम कहा और पाकिस्तान की मुखालफत की, फिर आपको उसके ताने बाने देवबंद मूवमेंट से मिलते हैं जाके, जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा था, देखिए मेरे अल्फाज नहीं है,
बहुत सख्त अल्फाज,
अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं देवबंद मूवमेंट के बारे में, इनमें और कादियानियों में कोई फर्क
नहीं है, लिखा भी
डॉक्यूमेंट है, मेरे अल्फाज तो नहीं है, तो क्यों अल्लामा इकबाल,
लेकिन इन चीजों को छुपाया गया है वैसे 50 सालों में, ये बात माने बताया नहीं गया कि अल्लामा इकबाल जो कि आइडियोलॉजी देने वाले उनके ये नजरियात थे
देवबंद के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं था।
पहली बात हम आपको बताएं, देखिए अगर किसी की औलाद के किसी के माँ बाप अगर जानी हो, बदकार हो, तवायफे हो, तो वो औलाद कभी नहीं बताएगी कि मेरे माँ बाप ये थे।
सही,
लोग तो कहेंगे बड़े अशराफिया थे, बड़े आला थे, बड़े जमींदार थे, बड़े अपने इलाके के इल्म फजल वाले लोग थे, कोई ये नहीं बताता कि मेरे माँ बाप जो थी, मेरी माँ तवाइफ थी, मेरा बाप तिब था, कोई नहीं बोलेगा ना।
सही,
इनके साथ अलमिया यही हो गया कि इनके सारे आबाओ अजदाद जो थे वो तहरीक पाकिस्तान में मुशरिकों के साथ खड़े थे।
बिल्कुल सही।
अब ये कैसे बोले कि हम मुशरिकों के साथ थे, पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान को हाईजैक करना है तो फिर इनको कहानी तो बनानी है एक ना।
बिल्कुल सही।
यानी मैंने ये भी इनके उलमा को सुना कहते हुए कि जनाब पाकिस्तान तो बनाया ही देवबंदियों ने, और जनाब और पाकिस्तान का कोई मसलक होगा तो देवबंद मसलक होगा।
इकबाल वो किसे समझा रहे थे?
इकबाल किसे समझा रहे थे?
मिल्लत का तसव्वुर क्या है? वो तो इन्हीं के उल्मा को समझा रहे
थे। हुसैन अहमद मदनी का तो नाम लेगा, हुसैन अहमद अस देवबंद कलाम इकबाल में तो उसका नाम लिखा हुआ है, निकाल तो नहीं सकते।
नाम लिखा
उसका तो नाम भी नहीं निकाल सकते। सरदार उलूम का नाम भी है उसके, उसका अपना नाम भी।
सही, इकबाल को आप सेक्टेरियन भी नहीं कह सकते।
इकबाल को आप कुछ कह नहीं सकते, क्या करेंगे?
सही।
और आप ये भी नहीं कह सकते कि अब ये भी नहीं कह सकते आप कि हम इकबाल से ज्यादा जानते हैं, मतलब खुद बेइज्जत होंगे।
सही बात है,
इकबाल को गलत तो नहीं कह सकते। तो ये इतना बड़ा ओपन एंड शट केस है इनके खिलाफ क्या? लेकिन 60 साल में जैसे आपने कहा कि इन्होंने इसको छुपाया, अपने माँ बाप की बदकारी छुपाई, बस इतनी सी बात है। और हमने क्या किया कि हमने बता दिया कि तुम नजीबुत्तरफैन नहीं हो, एक पलीत,
सही
है, तुम किस जगह से तुम आए हो। हमने सिर्फ एक्सपोज कर दिया। तो जाहिर इनके लिए फिर ये जिंदगी और मौत का मसला बन गया। दे हैड टू डिस्ट्रॉय अस, इनको हमें खत्म करना था ना, हरा लो।
बिल्कुल सही।
यानी इनके वो बिनोली टांग भैया मुफ्ती नईम का जो ग्रुप है, एक मौलवी उनका आया मेरे पास, उनका मुफ्ती था, वो शरीफ आदमी था, उसमें कंपैरेटिवली तो समझता था कि ये ज्यादती कर रहे हैं। उसने आके बताया, कहने लगे कि साहब हमारे मुफ्ती नईम ने कोई 20-15 अपने बड़े बड़े मुफ्ती बिठाए और हमारे सारे वीडियोज दिखाए इनको, जो हमने मजहब पे, दीन पे, शरीयत पे सब किए हुए हैं, कहा कि कुछ पकड़ो कि हम कुफर का फतवा लगा सकें।
सही।
कहते हैं ये पहली दफा हुआ है हमारे साथ कि हम उसमें से कुछ चीज, कोई चीज पुराना सुनने के खिलाफ नहीं निकाल सके। कहते हैं हमने कोई मसलक नहीं छोड़ा देवबंदियों, ब्रेलवियों के खिलाफ और अपने देवबंद के ऑपोजिट जो थे उनके खिलाफ, और जो हर एक के हम
प्रोफेशन
यही है कुफर के फर्क। कहते हैं आपके खिलाफ हम नहीं लगा सके, तो हमने घिसा पिटा फिर वो यूसुफ वाला केस निकाला, जो हमको
वो उनको नहीं मिल पाया ना, और कुछ ऑब्वियस था, वो तो वो फ्रस्ट्रेशन ही यही नजर आती थी कि 20 साल पुरानी
एक चीज, और उसमें भी झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं बता रहे कि
और वो जनरेशन वो है ही नहीं, और नई जनरेशन को पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ।
लोग अपने उलमा पे एतबार करते हैं, ये सोचना मुश्किल है आजकल की नस्ल के लिए इनकी, कि इनके आलिम एक्चुअल झूठ
बोलते हैं,
यानी मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोगों के लिए मानना मुश्किल है ना, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारे बड़े बड़े तो ये कह रहे हैं।
ये मुफ्ती नईम जाता है इशरतुल इबाद को मिलाता है अहमद लुधियानवी से, क्या चक्कर है?
देखिए ये सारा नेक्सस है कि आप इनका नेक्सस बड़ा पलीत है, ये सारा इंडियन नेक्सस है। आप देखें ताहिर अशरफी कितना बड़ा देवबंदी फसादी है इनका।
सही है।
एक तरफ वो मुफ्ती नईम के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ इम्तियाज आलम के साथ बैठा हुआ है, सैफमा के साथ है, और सैफमा ने इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भर्ती कराया। ये कौन सा मौलवी है कि जो एक तरफ सैफमा से जुड़ा हुआ है और एक तरफ सिपाही सहाबा से जुड़ा हुआ है, लश्कर जंगवी से जुड़ा हुआ है?
बिल्कुल सही है।
ये लिंक नजर नहीं आते लोगों को?
बहुत।
तो बात ये, और हमने चूंकि सैफमा को भी अटैक किया है और तकफीरी और खारजियों को भी किया,
वही मैंने कहा ना, आप जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है, यानी आप वो सेकुलर पैराडाइम में इनको नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो हमारा आइडियोलॉजिकल पैराडाइम उसी में कन्फ्रंट कर रहे हैं।
इनकी डिफीट शिकस्त इनको इसी बात से हुई है कि हमने इनको कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इनको डिस्ट्रॉय किया।
बिल्कुल,
जैसे आपने कहा कि हमने पाकिस्तान की जो मुशर्रफ की आइडियोलॉजी थी ना, इनलाइटेंड मॉडरेशन, उसने तो इनको भड़का दिया।
बिल्कुल।
आप एक मजहबी जंग एक सेकुलर आइडियोलॉजी से नहीं लड़ सकते,
नहीं लड़ सकते।
आप जब तक कुरान और सुन्नत की असल तशरी लेकर सामने
नहीं, ऑल्टरनेटिव करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे